Okay. Dann alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa amma ba'd. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Faman ibtagha wara'a dhalika fa'ulaika humul 'adun walladhina hum li'amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladhina hum bi shahadatihim qa'imun. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو ہم پچھلی کلاس میں پیج نمبر 558 کے اوپر پڑھ رہے تھے باشو قرآن میں. اس کو چلے لکھ دیا میں نے پیج 558 پر ہے. تو اس میں جو ٹاپک تھا وہ اس آیت کے تحت تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایمان والوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہ سب سے پہلی اور جو ڈومیننٹ خصوصیت تھی ایمان والوں کی وہ تھی کہ یہ نماز پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, الا المصلین. اور پھر مسلین کی فردر کوالیفیکیشن تھی کہ ایسے مسلین الذینہم علی صلاتہم دائمون, کہ جو اپنی نماز کے اوپر دوام اختیار کرتے ہیں یعنی قائم رہتے ہیں, اس کا پورا خیال کرتے ہیں, اس کے اندر تعدیل ارکان کرتے ہیں, اس کے اندر ترتیل قرآن کرتے ہیں یعنی قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں, خشوع اور خضوع کا خیال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ نمازیوں کی ایک خصوصیت بیان کری تھی. دوسری خصوصیت تھی والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, کہ یہ نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے مالوں کے اندر ایک معلوم حق ہوتا ہے, ایک پری ڈیٹرمنڈ اماؤنٹ ہوتا ہے مانگنے والوں کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو سوال نہیں کرتے, یعنی سفید پوش لوگ جن کو ہم کہتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر, کہ یہ غیرت کی وجہ سے اور اپنے عزت نفس اور خاندانی شرافت کی وجہ سے یہ کسی سے لپٹ کے مانگتے نہیں ہیں, رائٹ, بھکاریوں کے طریقے سے مانگتے نہیں ہیں. تو جو کامل ایمان والے لوگ ہوتے ہیں یہ ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں اور ان کو ان کے گھر میں پہنچا کر کے آتے ہیں, ٹھیک ہے, بن مانگے پہنچا کے آتے ہیں. تو للسائل والمحروم, محروم سے وہ لوگ مراد ہیں, سفید پوش جن کو کہتے ہیں. والذین یصدقون بیوم الدین, تیسری جو صفت تھی ان کی کہ یہ لوگ قیامت کے دن کے اوپر یقین رکھتے ہیں یعنی اپنے دل سے اور اپنی زبان سے تصدیق کرتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, اور وہ لوگ یعنی اپنے رب کے عذاب سے اپنے آپ کو یعنی بے خوف نہیں سمجھتے, اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے اپنے رب کے عذاب سے, کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا ایمان والے, خاص ایمان والے جو لوگ ہوتے ہیں نا جن کا ذکر قرآن کرتا ہے, تو ان لوگوں کی ایک بڑی بنیادی صفت ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت بھی کرتے ہیں, خوب عبادت کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے خوب ڈرتے بھی ہیں, ٹھیک ہے. اسی کو ہمارے مشائخ کیا فرماتے ہیں کہ یہ بھاگ بھاگ کے کرتے بھی ہیں اور کر کر کے ڈرتے بھی ہیں, ٹھیک ہے, کرتے بھی ہیں اور ڈرتے بھی ہیں. یہ لوگ جو ہے نا یہ کبھی بھی اس طرح سے بات نہیں کرتے کہ میں اتنی عبادت کر تو رہی ہوں, میں کر تو رہا ہوں, رائٹ, کہ ہم کر تو یعنی یہ جو ہمارے یہاں ایک بڑا ایک محاورے کا حصہ ہے جیسا کہ نا ہمارے بول چال کا یہ حصہ ہے کہ کر تو رہی ہوں میں, ایسے جواب دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ کو نصیحت کرے نا, کوئی غلط کام سے روکنے کی نصیحت کری یا کوئی اچھا کام کرنے کی نصیحت کر دی تو ہم نا آگے سے جواب دیتے ہیں کر تو رہا ہوں میں, رائٹ, اس طریقے سے, ہاں, ٹھیک ہے. تو یہ جو جواب ہوتا ہے نا, یہ جواب جو ہے یہ انڈیکیشن ہوتی ہے اس بات کی کہ ہم ڈر نہیں رہے, ہم اپنے کرنے کے اوپر مطمئن ہیں, ٹھیک ہے, ہم مطمئن ہو گئے ہیں. اور یہ مطمئن ہو جانا جو ہے نا, اپنے عمل پر مطمئن ہو جانا, یہ بڑی ڈرنے والی بات ہے, یہ بہت ڈرنے والی بات ہے, ٹھیک ہے. شیطان جو ہے نا وہ عمل پر مطمئن کرتا ہے کہ تم تو بہت اچھا کام کر رہے ہو, तुम बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ईमान वालों की सिफत ये होती है कि वो मुतमईन नहीं होते, ठीक है। वो हमेशा और से और की जो सुजू में रहते हैं, और ना अपने अमल को ऐसा नहीं समझते कि गोया कि उनका अमल जो है वो उनको निजात दे देगा, उनको निजात दिला देगा, ऐसा नहीं समझते, ठीक है। मायूस भी नहीं होते, मायूसी की यहाँ पे बात नहीं हो रही कि आप मायूस हो जाएं कि मेरा अमल तो मुझे निजात दिला ही नहीं सकता। मायूसी एक बिल्कुल डिफरेंट कैफियत का नाम है, ठीक है। और अल्लाह ताला का खौफ और अल्लाह ताला की खशियत, ये एक दूसरी कैफियत का नाम है। अल्लाह ताला की खशियत और खौफ जो है ना, ये एक मतलूब चीज है, ये हमारे अंदर होने की जरूरत है, ठीक है। मायूसी जो है वो कुफ्र है, तो इन दोनों के दरमियान फर्क को भी जो है वो समझना पड़ता है, ठीक है। तो जो अल्लाह के बंदे होते हैं वो नेक काम करते हैं और करते भी हैं और डरते भी हैं, वो अपने काम पर कभी मुतमइन नहीं होते। पिछले दिनों इस आजिज ने एक 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 फॉर्म भेजा था ग्रुप के ऊपर, ये जो दीन एसेंशियल्स फॉर वुमेन का ग्रुप है, तो उसमें बच्चों की तरबियत से रिलेटेड एक फॉर्म भेजा था, ठीक है। उस फॉर्म के अंदर आप लोगों ने देखा ना वो फॉर्म, किसी ने अगर नहीं देखा हो, किसी को वो फॉर्म नहीं मिला हो, कोई ऐसा है, राइट, था ना फॉर्म भेजा था, तो उस फॉर्म के अंदर बड़े अच्छे अच्छे सवाल थे कि क्या आप अपने बच्चे के साथ ऐसे करते हैं, क्या आप उनके साथ वक्त स्पेंड करते हैं, क्या आप उनसे जो है वो बातचीत करते हैं, क्या वो आपके ऊपर जो है वो आप यानी अपनी बातें शेयर करते हैं आपसे, नहीं करते हैं, ये सारी बातें थी उसके अंदर, बहुत अच्छी अच्छी बातें थी, ठीक है। लेकिन एक सवाल उसके अंदर ऐसा था कि जिससे कि एक्चुअली इस आजिज को इख्तिलाफ था, ठीक है, मुझे उससे इख्तिलाफ था, ठीक है। लेकिन चूंकि एक तो वक्त भी नहीं था मेरे पास कि मैं बड़ी तफसील से उसको एक्सप्लेन करूं मैसेज के अंदर, और दूसरा ये कि वो उलमा का बनाया हुआ एक फॉर्म था, ठीक है, और अब उन्होंने एक डिफरेंट एंगल से उस बात को किया होगा और मैं एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल से उस बात को देख रहा था। वो क्या बात थी जिससे कि मुझे इख्तिलाफ था, ठीक है, वो ये बात थी कि उन्होंने एक पॉइंट उसमें ये लिखा था कि क्या आप अपने बच्चों की जो तरबियत के लिए काम कर रहे हैं, क्या आप उससे मुतमईन हैं, क्या आप उससे मुतमईन हैं, ठीक है। और अगर उसका जवाब आप हाँ में देंगे ना, तो आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उन्होंने अपने फॉर्म में इस तरह किया था कि अगर आप इसका जवाब हाँ में देंगे तो आपको जो है वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे कि हाँ आप मुतमईन हैं, ठीक है। लेकिन जो जो डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर जो होता है वो इस तरह से नहीं सोचता, ठीक है, क्योंकि मशायख का जो काम है ये डॉक्टर वाला काम है। डॉक्टर किस तरीके से सोचता है कि उसको जो है वो हर किस्म की बीमारी को जो है ना वो पकड़ना होता है, वो हर किस्म के ना वो यानी मनफी चीजों को जो है वो पकड़ने की कोशिश करता है ताकि तमाम मनफी बातों का इलाज हो जाए। तो डॉक्टर जो होता है ना वो मुतमईन नहीं होता अपने मरीज को देख करके, ठीक है, बल्कि वो चाहता है कि उसका मरीज जो है वो अपनी सेहत के बारे में हर वक्त एक फिक्रमंद रहे, ठीक है, नफसियाती मरीज ना बन जाए, नफसियाती मरीज नहीं बन जाए कि मैं बीमार हूं मैं बीमार हूं मैं बीमार हूं, इस तरीके से नहीं, ठीक है, लेकिन अपने सेहत के बारे में मुतमईन भी ना रहे, ठीक है। क्यों मुतमईन, क्यों डॉक्टर्स इस तरीके से करते हैं कि अपने सेहत के बारे में मुतमईन ना रहे, उसकी वजह ये होती है कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो मरीज के अंदर कुछ आसार देख रहे होते हैं बीमारी के, ठीक है, बीमारी के आसार भी देख रहे होते हैं और ये भी देख रहे होते हैं कि मरीज जो है वो जिस माहौल में रह रहा है उस माहौल के अंदर बहुत सारी बीमारियां मौजूद हैं। तो चूंकि माहौल भी बहुत ज्यादा बुरा है और मरीज के अंदर कुछ आसार भी बीमारी के नजर आ रहे हैं ना, इस वजह से डॉक्टर्स जो है वो मरीजों की बीमारी को पकड़ने के चक्कर में हर वक्त रहते हैं ताकि उनका जो है वो इलाज हो सके। अगर मरीज के अंदर कोई बीमारी के आसार नजर नहीं आ रहे और उसका माहौल भी जो है वो बहुत अच्छा है, सेहतमंद माहौल है, तो फिर मरीज को कहते हैं कि भाई आप खामखा अपने आप को बीमार मत समझे ना, आपका तो माहौल भी अच्छा है और आपके अंदर कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे, तो अब आप खामखा अपने आप को अगर बीमार समझेंगे तो आप एक नफसियाती मरीज होंगे, ठीक है। लेकिन भाई आसार भी नजर आ रहे हैं बीमारी के और माहौल भी बहुत ज्यादा बुरा है, तो फिर कोई कहे कि मैं तो मुतमईन हूं अपनी सेहत से, तो डॉक्टर कहेगा कि नहीं, तुम कैसे मुतमईन हो सकते हो, हर चीज इतनी खराब जा रही है, तुम अपनी सेहत से कैसे मुतमईन हो सकते हो। बिल्कुल इसी तरीके से औलाद की तरबियत एक इतना बड़ा चैलेंज है खुसूसन इस दौर में जिसमें हम रह रहे हैं, जिसके अंदर के बहुत बुरा माहौल है, तो इस माहौल में हम अपनी औलाद की तरबियत के बारे में मुतमईन कैसे हो सकते हैं? अगर हम मुतमईन होकर बैठ जाएंगे तो यकीनन हम औलाद की तरबियत में कोताही कर जाएंगे। ठीक है, इस वजह से वो जो फॉर्म आप लोगों को भेजा था, तो वो फॉर्म जो था ना, उससे उसके अंदर ये वाले सवाल से आजिज मुत्तफिक नहीं था कि आप अपने औलाद की तरबियत से अगर मुतमईन हैं तो अपने आप को पॉजिटिव मार्क्स दें, अच्छा ग्रेड करें अपने आप को। नहीं, क्योंकि इस दौर के अंदर आप मुतमईन नहीं हो सकते। ये दौर इतना बुरा दौर चल रहा है, इतने बुरे असरात माहौल के अंदर, मुआशरे के अंदर हमारे औलाद पर पड़ते हैं कि हमें तो मुस्तकिल जो है वो यानी फिक्रमंद रहने की जरूरत है इसके अंदर। ठीक है, तो यही बात जो है वो इस आयत की तफसीर के अंदर भी है कि जो कि हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं ना कि औरतों से निकाह जिनसे सॉरी अपने हाथ से शहवत पूरा करना हराम है। तो पिछली क्लास के अंदर आप लोगों को बताया था कि भाई चूंकि माहौल में बहुत ज्यादा जो है वो औरियानियत है, ठीक है, बहुत ज्यादा इमेजेस जो है वो आपको यानी अपने घर के अंदर जो जो टीवी स्क्रीन है, टीवी स्क्रीन के अंदर इतनी औरियानियत होती है, इतनी जो है वो फोहश बातें होती हैं। यानी हम जब बच्चे थे, छोटे थे हम, तो हम भी टीवी देखा करते थे। अनफॉर्चुनेटली हमारा घराना कोई ऐसा नहीं था कि जिसके अंदर के जो है वो टीवी ना हो। ठीक है, उलमा मशायख के घराने ऐसे होते हैं जिनके अंदर टीवी नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन हमारा कैसा घराना नहीं था, तो इस वजह से हम टेलीविजन देखा करते थे, उसके ऊपर फिल्में भी आती थी, उसके ऊपर ड्रामे भी आते थे, उसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स आते थे। ठीक है, तो हम टीवी के ऊपर ग्रो हुए हैं। ठीक है, 80s की बात कर रहा हूं मैं, बिकॉज 70s में तो बहुत छोटा था, लेकिन 80s के अंदर तो हम टेलीविजन वगैरह देखते थे, 90s के अंदर भी देखते थे। तो उस जमाने में जो टेलीविजन में चीजें तस्वुर भी नहीं की जा सकती थी कि ऐसी चीजें दिखाई जाएंगी या ऐसी चीज ऐसे बातें की जाएंगी, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें जो है वो आज पाकिस्तान के टेलीविजन के अंदर दिखाई भी जाती हैं और बात भी की जाती है उन चीजों के ऊपर। ठीक है, तो अब जिन लोगों ने घरों के अंदर टेलीविजन रखा हुआ है, तो मैं तो जानता हूं ऐसे लोगों को कि बच्चे और बड़े सारे मिलकर के टेलीविजन एक साथ देखते हैं, फोश किस्म की चीजें होती हैं, पाकिस्तान के टेलीविजन के चैनल्स के अंदर ऐसी बातें आ रही हैं। फिर उसके ऊपर ये कि जो सैटेलाइट एंटेनाज डिश होती हैं और इसके अलावा जो इंटरनेट केबल होता है, तो उसके जरिए से तो फिर पूरी दुनिया के चैनल्स जो हैं वो आपके घर के अंदर टेलीविजन स्क्रीन पे आ रहे होते हैं। इंडिया की फिल्में कितनी फोहश और बदतरीन होती हैं, राइट? उसके अलावा जो अमेरिकन फिल्में होती हैं, क्या उनके अंदर कोई जो है वो शर्म हया का कोई तस्वुर ही नहीं होता। अब ये सारी चीजें आपका बच्चा देख रहा है, फिर उसके बाद इंटरनेट के ऊपर जा रहा है, इंटरनेट के ऊपर तो और भी ज्यादा बिल्कुल ही कोई कंट्रोल नहीं है। टेलीविजन में तो फिर एक होता है कि भाई आपके पास चैनल्स होते हैं, आप चाहे तो चैनल लगाएं, चाहे तो चैनल ना लगाएं, ठीक है, लेकिन इंटरनेट के ऊपर तो चैनल का भी कोई सिस्टम नहीं है। यानी आप कोई वेबसाइट देख रहे हैं, बहुत अच्छी कोई वेबसाइट है, एकदम से जो है वो कोई पॉपअप स्क्रीन आ जाएगी जिसको कि आपने खुद से नहीं आपने अप्रोच किया उसको, आपके मांगे बगैर ही जो है वो एड आ गया, आपके मांगे बगैर ही, आपके क्लिक किए बगैर ही जो है कोई ऐसी चीज आ गई। ठीक है, तो इसकी वजह से ना औरियानत यानी जो माहौल के असरात आंखों पर पड़ते हैं और कानों के जरिए से अंदर जाते हैं, राइट? तो ये बहुत बुरे असरात होते हैं। फिर जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो बिलबोर्ड्स के ऊपर क्या क्या चीजें नहीं मौजूद होती हैं, ठीक है, और फिर जब कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं तो वहां पे जो जो लड़के और लड़कियां होते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा यानी भूखे किस्म के लोग नहीं होते। यानी हम ऐसे ऐसे लड़कों को जानते हैं कि जो कि नेक रहना चाहते हैं, लेकिन बाकायदा लड़कियां कॉलेज के अंदर ऑफर करती हैं अपने आप को, क्योंकि लड़का थोड़ा सा जरा स्मार्ट सा होता है, थोड़ा सा उसके अच्छे लुक्स होते हैं, तो लड़कियां अपने आप को पेश करती हैं पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, तो जाहिर सी बात है आपको भी यानी आप तसव्वुर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के जो ये स्कूल कॉलेजेस हैं जहां पे के मखलूत तालीम होती है, तो यहाँ पर तो ये माहौल है। पुराने यानी हम अपने दौर में नहीं तसव्वुर कर सकते थे कि लड़कियां और लड़के जो है वो एक साथ हाथों में हाथ डाल करके जो है वो कुछ करें। आज सुनने में आ रहा है कि आज सिटी स्कूल, कराची के अंदर जो सिटी स्कूल है जिसके अंदर के 12th ग्रेड तक की तालीम होती है खाली, ठीक है, उसके ऊपर की तालीम वहां होती भी नहीं है, वहां पर वो नजारे देखने को मिलते हैं कि जो कि पहले तस्वुर ही नहीं किए जा सकते, राइट? और डांस पार्टीज होती हैं खुल करके, ये जो IBA बड़ा मशहूर पाकिस्तान की कराची का इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बड़ी अच्छी पढ़ाई होती है उधर। लम्स जो लाहौर के अंदर है, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, यहाँ बड़ी अच्छी पढ़ाई होती है, पाकिस्तान के जो है ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के हैसियत रखते हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन वहां पर जो क्लासों के अंदर हो रहा होता है, डांस पार्टियां खुलेआम हो रही होती हैं। और आज की बात नहीं कर रहा, आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, राइट। जो हमारे दोस्त 20 साल पहले वहां पे होते थे, 15 साल पहले होते थे, वो बताते हैं कि जी ये हो रहा था वहां पे, हम ये किया करते थे उधर, ठीक है। तो इस माहौल के अंदर जब आपको बच्चा जाता है तो उसके अंदर शहवत जो होती है ना वो बढ़ती है, ठीक है, और वो फिर इस निकालनी होती है उसको, कहीं ना कहीं उसने उसको निकालना है। तो अगर आप उसका निकाह नहीं करेंगे तो वो जिना के जरिए से निकालेगा, किसी को अपना दोस्त बनाएगा, किसी को अपने दोस्त बनाएगी। हमारी एक रिश्तेदार है, राइट, उनकी बेटी गालिबन 14-15 साल की थी, उसकी बेटी की दोस्त या उसकी बेटी की, यानी हमारे रिश्तेदार की बेटी के कजन की दोस्त, 14 साल की लड़की कराची शहर के अंदर प्रेग्नेंट होकर के आ गई, प्रेग्नेंट होकर आ गई, राइट। कहां से, क्या हो गया, ये कैसे हो गया सब कुछ, राइट। तो ये माहौल है जिसके अंदर हमारी औलादें जा रही हैं, राइट। तो वो अब ये इस शहवत को कैसे निकालेगा, ये जिना के जरिए से निकालेगा। और जो जिना नहीं कर सकेगा, ठीक है, जिसका कि बाकायदा किसी के साथ ताल्लुक नहीं बनेगा, तो फिर वो अपने जात के अंदर ही निकालेगा, जिसको कि यहां पर जिना बिल जद कहते हैं, ठीक है, हाथ के साथ जिना करना, मैस्टरबेशन जिसको कहते हैं। तो इसके अंदर लड़के तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, लड़कों के दरमियान मशहूर होता है कि 100% लड़के जो होते हैं ना, ये जो बुरे माहौल के होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली आज तो कोई भी महफूज नहीं है ऐसे, 100% जो लड़के हैं इस टीन एज के अंदर ये मैस्टरबेशन कर रहे होते हैं, 100%, ठीक है। 98% जो है वो उसको एडमिट करते हैं, और 2% जो एडमिट नहीं करते ना इस बात को, वो झूठ बोल रहे होते हैं, ठीक है, करते 100% लोग हैं, सही है। तो इन चीजों का ख्याल वालदैन को बिल्कुल भी नहीं होता, वालदैन को तो इतना भी नहीं पता होता कि हमारे बच्चे जो हैं वो बालिग हो रहे हैं, उनके जिस्म के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, उनको बताना कैसे। मर्दों को तो बिल्कुल इन बातों का एहसास नहीं होता, बिल्कुल कुछ पता नहीं होता, वो खुद जब बालिग हुए थे उनके बाप ने उनको बताया ही नहीं कुछ, वो तो बालिग हो गए, पता नहीं कैसे उनको बाद में इश्तिहारों के जरिए से पता चला, या किसी और, जब शादी का वक्त आया, और शादी कब होती है, 30, 35, 40 साल में जाके शादी होती है लोगों की, ठीक है, 30 साल से पहले तो शादी का कोई तस्वीर ही नहीं है हमारे यहाँ, राइट, यानी इस मुआशरे के अंदर। तो जब शादी होती है तब पता लगता है कि ये बुलूगत का मतलब क्या होता है, कुछ लोगों को तो उसके बाद भी नहीं पता लगता, ठीक है। तो मर्दों का तो ये हाल है कि उनको कुछ पता नहीं होता, वो अपने बेटों को क्या बताएंगे, ठीक है। और औरतों को तो फिर चलो हैज की वजह से पता चल जाता है कि भाई खून का मसला है, तो उसको तो छुपा नहीं सकते ना, बच्ची भी परेशान हो जाती है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, तो वो जाके अपनी माँ को बताती है, अगर माँ के साथ उसका ऐसा ताल्लुक है, वरना आज तो ऐसी माएं हैं कि जिनके साथ ऐसा ताल्लुक ही नहीं होता अपनी बेटियों का कि वो अपनी माँ को ये बातें बताएं, लेकिन चलो बेटियों में तो फिर पता लग जाता है बात, ठीक है। लेकिन लड़कों में तो कुछ पता नहीं लगता, कोई बाप के साथ ऐसा रिश्ता नहीं होता, कोई पूछने का रिश्ता नहीं होता, कोई एतमाद का रिश्ता नहीं होता, बाप को खुद कुछ पता नहीं होता, तो वो अपने बेटे को क्या समझाएगा। तो आप लोग जो कि ये क्लासे ले रही है ना, ये एक मामूली बात नहीं है, इसको बहुत बड़ी नेमत समझें, ठीक है, कि ये बातें आपको सुनने को मिल रही हैं। आपने अपने अपने शोहरों की तालीम करनी है, ये बातें आपको बतानी होंगी अपने शोहरों को कि वो आपके बेटों का ख्याल करें, ठीक है, ये उनके ऊपर वही नहीं नाजिल होगी, वो खुद से नहीं ये चीजें देखेंगे, ये आपको उन्हें बताना पड़ेगा। और ये मत समझे कि मेरा शोहर तो दीनदार है, उसको पता होगा, नहीं, बहुत से दीनदार मर्द हो जाते हैं, उनको नहीं पता होती ये बातें, समझ में आ रही है। बहुत से दीनदार मर्द होते हैं, तबलीगी जमात में भी जा रहे होते हैं, बयानात भी सुन रहे होते हैं, शेख से बैत भी कर लेते हैं, उनको ये बातें नहीं पता चलती हैं, ठीक है। तो ये बातें सीखनी पड़ती हैं, और अगर उनका ध्यान इस तरफ नहीं है, और आपके बेटे जो है वो 9 साल का आपका बेटा हो चुका है, 9 साल की उम्र में लड़कों के अंदर ये बुलूगत के असरात शुरू हो जाते हैं, उनको बतानी होती हैं बातें, ठीक है, 12, 13, 14 साल के अंदर लड़के बालिग हो जाते हैं, तो उनको बताना होता है कि कब आप बालिग हो गए, कैसे पता चलेगा कि आप बालिग हो गए, ठीक है, वरना लड़के जो है ना वो फिर परेशान हो जाते हैं। और फिर मैं कितने लड़कों को ऐसे जानता हूँ कि जो कि फिर सड़कों के ऊपर जो वो नहीं बैठे होते कराची शहर में और लाहौर शहर के अंदर, पाकिस्तान के शहरों में, जो वो यानी इस किस्म के जो उन्होंने क्लिनिक्स खोली हुई होती हैं, यानी इस किस्म की बीमारियों का इलाज उसके इश्तिहार लगाए होते हैं, लड़के उनके पास पहुंच जाते हैं, उनसे जाकर के जो है वो अपनी बातें पूछते हैं, और फिर वहां से कोई दवा लेकर के आ जाते हैं, उनको वो डॉक्टर भी नहीं होते हैं वो लोग, और पता नहीं क्या वो लोग खाने को देते हैं, किस किस्म की जो उसके अंदर जो है वो यानी हार्मफुल किस्म के एलिमेंट्स होते होंगे, वो ये चीजें जो है वो फुटपाथ के ऊपर और इस तरह की क्लिनिक से जो है वो जाकर के लेके आ जाते हैं, और इसको खाने से जो है वो उनकी सारी जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है, राइट, पूरा उनका सारा सिस्टम ही खराब हो सकता है इस किस्म की दवाएं खाने से। तो माँ बाप के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं है कि माँ बाप जो है वो उनको बताएं, ठीक है। तो अब जो ये क्लासें आप लोग ले रही है ना, तो ये आपने अपने अंदर यानी दफन नहीं कर लेना इन बातों को ना, बल्कि इनको आपने अपनी जिंदगी में भी अप्लाई करना है, और अपनी बहनों को, अपनी दोस्तों को, अपनी और दूसरे रिश्तेदारों को भी बताना है कि भाई ये जरा जागो, जरा सोचो कि क्या हो रहा है, ठीक है। और अपने मर्दों से बात करो, अपने शौहरों से बात करो कि क्या आपने मालूम किया है कि मेरे बेटे के साथ जो है वो क्या तब्दीलियां आने वाली हैं और कैसे वो उसको हैंडल करेगा। आपने एक प्राइवेट एक मैसेज लिखा है, जरा मैं इनका पढ़ लूं क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि हमने अपने घर टीवी कब से हटा दिया है, 7 या 8 साल हो गए हैं, मगर हमारे बच्चों के पास मोबाइल तो है। ठीक है भाई, टीवी की बात तो उस वक्त थी ना जबकि मोबाइल दुनिया में होता नहीं था, ठीक है। तो हमारे तो बचपन में मोबाइल होता ही नहीं था, तो फिर टीवी ही जो है वो ईमान की टीवी होती थी, ठीक है। लेकिन अब तो टीवी के ना होने से कोई खास मतलब, ठीक है, बहुत अच्छी बात है टीवी आपने हटा दिया, अल्लाह कबूल फरमाए इस काम को, लेकिन मोबाइल तो नहीं हटाया ना। अब बच्चों को मोबाइल तो बिल्कुल देना ही नहीं चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए था, ठीक है। हम ऐसे बच्चों को जानते हैं 16-17 साल की उम्र में भी उनको स्मार्टफोन कराची शहर के अंदर उनके माँ बाप ने नहीं दिए, और उन बच्चों की अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तरबियत करी कि उनको चाहिए भी नहीं मोबाइल फोन, वो डिमांड भी नहीं करते, ठीक है। तो ये भी मुमकिन है, ये नामुमकिन नहीं है इस मुआशरे, इस दौर के अंदर ये बात भी नामुमकिन नहीं है कि बच्चों को मोबाइल फोन ना दिया जाए, ठीक है। लेकिन उसके लिए थोड़ा काम करना पड़ता है ना कुछ, उसके लिए जरा ही अकल इस्तेमाल करनी पड़ती है और बड़ों से पूछना पड़ता है कि मैं कैसे करूँ ये काम। अब यहाँ पे इस क्लास में तो आपने पूछ लिया है, इस क्लास में लेकिन आपको कितनी तफसील बताई जा सकती है, ये तो आपको क्लास के बाहर भी पूछना चाहिए ना, ठीक, कि कैसे करूं। तो अगर अब तक नहीं पूछा है तो फिर आपने काफी वक्त जाया कर दिया है ना। तो अब अल्लाह ताला से मदद मांगे, दुआ करें कि अल्लाह जो असरात हो चुके हैं और मैं अपने बच्चों को जो है वो इस अजीम तरीन आजमाइश के अंदर अपने हाथों से धक्का दे चुकी हूं, ठीक है, तो ऐ अल्लाह फिर भी आप उसको बचा लें, यानी अपना अपने गुनाह का इतना ज्यादा जो है ना वो इकरार करना पड़ेगा अल्लाह ताला से कि अल्लाह मैंने एक अजीम गुनाह कर लिया है, मैंने और मेरे शोहर ने एक अजीम तरीन गुनाह कर लिया है कि अपने बच्चों की जो आजमाइश है इस दुनिया की जिंदगी में, राइट, उस आजमाइश को मैंने 1000 गुना मल्टीप्लाई कर दिया है उनके हाथ में स्मार्टफोन दे करके। तो अब जो मैंने उनको इतनी अजीम तरीन आजमाइश में मुबतला कर दिया है ना, आप पहले तो मुझे माफ करें उस आजमाइश में मुबतला करने के ऊपर, ठीक है, और उसके बाद फिर ना अल्लाह आप मेरी मदद करें कि किसी तरीके से मेरे बच्चे उस आजमाइश में कामयाब हो जाए, सही है। तो ऐसे अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे। बिकॉज अब जो है ना आपको मैं ये तो मशवरा दे नहीं सकता कि आप छीन लें उनसे मोबाइल, इसलिए कि मुझे पता है आपके बच्चों के क्या क्या एजेस है, ठीक है। अब लंबा काम करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो इस वजह से इस क्लास के अंदर ये डिस्कशन तफसील से करने का फायदा नहीं है, उम्मीद है कि बिकॉज ये हर बंदे के अपने अलग अलग घर के मामलात भी होते हैं ना कि जी आपके बच्चा जो है वो कितनी उसकी उम्र है, वो कौन से स्कूल जा रहा है और क्या उसकी दोस्तें हैं, किस किस्म के उसने यानी उसके कजन्स कैसे हैं, क्या, ये बहुत सारी तफसीलात होती हैं। जब कोई बीमार पड़ जाता है ना, तो अब उसका इलाज जो है वो ऐसे किसी सेमिनार में या किसी क्लास में जवाब दे करके उसका इलाज नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्लास के अंदर जो बातें बताई जाती हैं ना वो होती हैं प्रिवेंटिव बातें, समझ में आ रही है, प्रिवेंटिव बातें, हाउ टू प्रिवेंट, ठीक है। ये होता है सेमिनार का टॉपिक, जो क्लास भी सेमिनार ही की तरह की एक चीज होती है, ठीक है। ये प्रिवेंटिव मेजर्स आपको बताए जा रहे होते हैं, लेकिन जब कोई इंसान बीमार पड़ जाता है ना, बुरी तरीके से बीमारी का में मुब्तला हो जाता है, अब उसका इलाज एक क्लास से नहीं किया जा सकता। क्लास से तो सिर्फ ये पता लगता है कि हाँ हम बीमार पड़ चुके हैं, हाँ हमने गलती कर ली है, हम प्रिवेंट नहीं कर पाए, ठीक है, अब जो है वो हम मुब्तला हो चुके हैं, लेकिन अब इसका इलाज कैसे किया जाए, ये इलाज क्लास के बाहर करना होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आप लोगों को डिस्कस करने की जरूरत है, मतलब क्यों नहीं डिस्कस करते हैं, किसने मना किया है? व्हाट्सएप क्या नहीं है दुनिया के अंदर? प्रोफेशनल कॉलेज में अगर हम बच्चों के शादी कर दें लाइक 20 या 21 की एज में, तो ये सोच पेरेंट्स के लिए सही है, ये सोच ही सही है अगर पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, अफोर्ड तो अगर ना भी कर सकते हो ना, फिर भी इस दौर के अंदर 20-21 साल की उम्र में शादी कर देनी जरूरी है। ठीक है, हजरत जी को जानते हैं ना, मौलाना पीर जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी, उनके साथ ये आजिज बैठा हुआ था पिछले रमजान मुबारक में मक्का मुकरमा में। ठीक है, तो बच्चों के हिफ्ज वगैरह के बारे में बात चल रही थी कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं बच्चे के ऊपर कैसे, और फिर हजरत ने वाकयात बताने शुरू किए। तो हजरत ने उस मजलिस में फरमाया कि मैं तो कहता हूं कि इस दौर में लड़कों की शादी 18 साल में कर देनी चाहिए। जब मैंने ये बात सुनी ना, मैं बिल्कुल हजरत के कदमों में बैठा हुआ था, राइट, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया कि हजरत क्या कह रहे हैं। मैंने कहा, हजरत क्या लड़कों की शादी या लड़कियों की शादी? क्योंकि लड़कियों की शादी के बारे में तो पहले सुना हुआ था, ठीक है, लेकिन मैंने फिर हजरत से पूछा, हजरत क्या लड़कों की या लड़कियों की? हजरत ने फरमाया लड़कों की। ठीक है, लेकिन फिर खुद ही कहने लगे, लेकिन करने नहीं देते ना। ठीक है, यानी उस जमाने में कुछ पाकिस्तान के अंदर भी ये बात चल रही थी कि जी वो चाइल्डहुड मैरिजेस और इस तरह की चीजें, ठीक है, तो 18 साल में करने नहीं देते, लेकिन भाई हम अगर कर नहीं सकते, कम से कम देखना तो शुरू कर देना, ठीक है ना, अपने लड़के के लिए, अपने बेटे के लिए, जो नेक घरानों की बेटियां हैं उनको देखना तो शुरू कर देना, बातचीत तो शुरू कर देना। अगर हम तलाश शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह 20, 22, 23 साल तक हमें मिल जाएगा कोई ना कोई, और उसकी शादी कर दें। 22, 23 से ज्यादा मत लेकर के जाएं, 25 साल भी बहुत बड़ी उम्र है, 25 साल तक मत खींचें उसको। ठीक है, अगर खुसूसन जब पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने आपको दिया है, तो भाई किस लिए दिया है? क्या कोई वेकेशन होम के लिए दिया है आपको कि जी जब बूढ़े हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तो फिर जाकर के जो है वो वेकेशन मनाए करेंगे कहीं पर? नहीं, औलादों पे खर्च करना है, उनके ईमान पे खर्च करना है, राइट, ईमान की हिफाजत के लिए खर्च करना है। तो बिल्कुल भी उनको, बेशक वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी शादी कर दें। ठीक है, और दूसरी बात ये भी याद रखें, जैसे आपका घराना माशाल्लाह दीनदार घराना है, ठीक है, तो आपने तो पहले से थोड़ी जहन साजी करके रखी हुई होगी ना दीन के बारे में, लेकिन अगर कोई ऐसा घर आना है ना कि जिसमें उन्होंने पहले से कुछ जहन साजी नहीं करी है, तो अब उनकी 22 साल में शादी जो है ना, वो ऐसे ना कर दें कि वो अगले दिन जो है वो तलाक दे करके आ जाए लड़की को, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, यानी 22 साल में शादी करने का मतलब ये नहीं है कि पकड़ करके जो है वो उसको बिठा दिया और उससे जो है वो यानी बंदूक की गोली, बंदूक के जोर के ऊपर उससे निकाह पढ़वा दी, यानी हाँ कहलवा दी, फिर तो वो एक चंद दिनों के बाद वो लड़ भड़ करके वो लड़की भी भाग जाएगी और लड़का भी भाग जाएगा, जैसे कि आजकल बहुत आम है ये। नहीं, बल्कि पहले से जो है वो इस तरह से उनकी जहन साजी करनी है, और जहन साजी कैसे करनी होती है, अल्लाह ताला से दुआ बहुत ज्यादा मांगनी होती है, और मशायख जो होते हैं ना, उन मशायख से मशवरा करना होता है, पूछना होता है, और कोशिश ये करनी होती है कि आपके जो बच्चे हैं वो मशायख से जुड़ जाएं, मशायख के साथ अपने मसलों को डिस्कस किया करें। ठीक है, बहुत जरूरी है ये बात कि वो अपने मसाइल जो है ना वो सामने रखें और उनसे फिर यानी गाइडलाइंस लें कि मुझे क्या करना चाहिए क्या। ठीक है, बेटी के 16 या 17 साल में, हाँ बेटी के जो है वो आप 16-17 साल में यानी आप देखना तो पहले से शुरू कर दें, 16-17 साल में, 19 साल से पहले पहले कर दें, 18-19 साल तक कर दें बेटी की शादी। ठीक है, हमारे हजरत ने खुद अपने बेटों की शादी जो है वो 21, 22, 23 के दरमियान दोनों बेटों की शादी कर दी थी। ठीक है, और बेटी की शादी जो है, जहां तक मैंने अपनी वाइफ से पूछा भी था कि रुख्सती जो है वो 19 में हो गई थी, शायद निकाह जो है वो 1-2 साल पहले ही हो गया था। ठीक है, तो 19 तक जो है वो माशाल्लाह वो अपने घर की हो गई थी। जी माशाल्लाह, आपके भतीजे की शादी 21 साल में हो रही है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो अब ऐसा अगर नहीं करेंगे तो बेजाहिर है फिर उन्होंने हराम तरीके से अपनी शहवत को पूरा करना है। घर के अंदर एक बात का और ख्याल रखना चाहिए कि लड़कों के कमरे में भी और लड़कियों के कमरे में भी ये जो आईने होते हैं ना, कद आवर आईने, ऊंचे यानी कद के बराबर जो आईने होते हैं, वो नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, अगर आईना है भी ना, तो सिर्फ सूरत देखने की हद तक होना चाहिए, ठीक है, बच्चों के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आप उनके घर में, उनके कमरे के अंदर ऐसी चीजें रखेंगे ना, फिर उनके लिए फिर अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तस्वीरें देखते हैं और जब आईने के अंदर अपने आप को देखेंगे तो फिर वो पीछे नहीं रह सकेंगे, फिर बच नहीं सकेंगे, ठीक है। तो अगर ये आईने हैं ना घरों के अंदर अपने, तो अपने कमरे में बेशक रख लें, बल्कि अपने कमरे में भी रखने की क्या जरूरत है, ठीक है। लोगों ने तो, अल्लाह माफ करे, अल्लाह रहम करे, जो होटल्स के अंदर हम जाते हैं तो होटल्स के अंदर उन्होंने पूरे होटल के बाथरूम को जो है वो आईना बनाया हुआ होता है, ठीक है। तो ये चीजें जो होती है ना, ये इंसान को इस गुनाह की तरफ धक्का दे रही होती है, वो नहीं बच सकता इन गुनाहों से फिर, ठीक है। तो इस वजह से जो गैर शादीशुदा होते हैं बच्चे, तो उनके उनके लिए इन चीजों का भी ख्याल रखना होता है। अच्छा, बाथरूम के अंदर अगर बच्चे जा रहे हैं तो बाथरूम में अगर बहुत देर लगा रहे हैं ना, तो ये भी खतरे की निशानी है, वो कुछ गड़बड़ हो रही है अंदर, ठीक है। तो उनको शुरू से जो है वो इस तरह से करें कि बाथरूम में लंबा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा इसको फोर्स ना करें कि वो आपसे नफरत करना शुरू हो जाए, ऐसा भी ना हो कि भाई उसको जरूरत है, कोई इसका मसला है, वो इस वजह से बाथरूम में, और आप जो है वो पीटे चले जा रहे हैं बाहर से, ठीक है। तो इस तरीके से जब बाहर से कोई पीटता है ना, चाहे माँ हो या चाहे बाप हो, ठीक है, तो अंदर जो बाथरूम में होता है ना, उसको नफरत हो जाती है ऐसे शख्स से, ठीक है। तो नफरत भी क्रिएट नहीं करना है, लेकिन साथ साथ जो है वो इसका भी ख्याल रखना है कि भाई अगर ऐसा हो रहा है कि वो लंबा टाइम बाथरूम में गुजार रहे हैं, तो फिर क्यों गुजार रहे हैं, ठीक है ना। बेहतर, सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि, यानी सबसे बेहतर क्या, बल्कि जरूरी है ये कि माँ बाप का, बाप का बेटे के साथ और माँ का बेटी के साथ इतना अच्छा ताल्लुक हो, इतना अच्छा जो है वो ट्रस्ट रिलेशनशिप हो कि बेटी हर चीज अपनी माँ के साथ डिस्कस कर सके और बेटा हर चीज अपने बाप के साथ डिस्कस कर सके, इतना जो है वो एतमाद का रिश्ता होना सबसे बेहतरीन चीज यही है, ठीक है। और ये एतमाद जो है ना, ये सिर्फ ये नहीं कि वो आप पर एतमाद करे, बल्कि आपको भी उसके साथ ऐसे डील करना पड़ेगा कि वो आप पर एतमाद कर सके। ऐसा नहीं हो कि वो जो आपको चीज बता रही है अब जो है वो आप लोगों को बताती फिर रही है, हर चीज शौहर को भी नहीं बताने की होती है, ठीक है। शौहर को भी जरूरी नहीं है कि आप एक एक चीज बताएं, सही है। तो बेशक अगर कोई ऐसा मसला है जो कि आप खुद से हैंडल नहीं कर सकती हैं, तो उसके अंदर शौहर को भी इन्वॉल्व करना होता है, लेकिन बेटी की अगर आप हर बात शौहर को बताएंगी ना, ठीक है, तो बेटी को भी पता लग जाएगा, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि फलाने साहब जो हैं, खुसूसन मेरे अब्बा साहब जो हैं, उनको मेरे बारे में ये बात पता चल चुकी है। तो जैसे ही बेटी को इस बात का अंदाजा होगा ना, माँ के ऊपर से उसका एतमाद खत्म हो जाएगा, वो आइंदा आपको कुछ नहीं बताएगी, ठीक है। तो एतमाद को, यानी हासिल करना पड़ता है, एतमाद को हासिल करना पड़ता है, उसके लिए बाएतमाद बनना पड़ता है, ठीक है। तो ये एतमाद जो है ना, ये सबसे ज्यादा लाजमी चीज है। ये एतमाद अगर माँ बाप के ऊपर औलाद का नहीं होता, तो फिर अपना वो एतमाद बाहर के लोगों पर बनाते हैं, राइट। स्कूल के दोस्त में कोई में एतमाद तलाश करेंगे, किसी और ऐसे शख्स के साथ एतमाद का रिश्ता बनाएंगे, चाहे वो ऑनलाइन क्यों ना हो, ऑनलाइन लोगों के साथ एतमाद का रिश्ता बनाएंगे, उनके साथ अपनी बातें शेयर करेंगे। क्यों शेयर करते हैं? क्योंकि घर में वालिदैन के साथ एतमाद का रिश्ता नहीं होता, वालिदैन हर वक्त उनको कोसते रहते हैं, हर वक्त उनको बुरा भला कहते रहते हैं, हर वक्त जो है ना वो अपनी डिमांड्स कि तुमने पढ़ना है, तुमने फलाना चीज बनना है, तुमने ये बन करके दिखाना है, तुमने ऐसे करना है, तुमने जो है वो अपने कजन को बीट करना है, तुमने अपने जो है वो फलाने साहब के बेटे को जो है और बेटी को जो है तुमने बीट करना है, राइट। ये जो वालदैन मुसीबत बनकर के अपने औलाद के ऊपर टूटते हैं ना, अल्लाह का अजाब बनकर अपनी औलाद के ऊपर टूटते हैं, ठीक है, ये जो अजाब बन के टूटते हैं ना, अपनी डिमांड्स उनके ऊपर लगाते हैं, इससे आपका, आपकी औलाद आपसे दूर हो जाती है, राइट। वो फिर आप पर एतमाद करना तो बहुत दूर की बात, वो तो आपसे नफरत करना शुरू कर देती है। इसी वजह से जो टीनेज जब उम्र में बच्चे आ जाते हैं ना, फिर वो अपने माँ बाप से बातें करना छोड़ देते हैं। कभी कभी नोट किया कि जो टीनेजर बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप से कम बातें करते हैं, राइट। या तो कुछ जगहों पर तो बिल्कुल बातचीत नहीं होती है और कुछ जगहों पर बहुत ही फॉर्मल किस्म की बातचीत होती है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यह होती है कि माँ बाप के साथ जो है ये, यानी अब उनका ये ताल्लुक खत्म हो चुका होता है, माँ बाप ने उनके साथ ऐसे ट्रीट किया होता है कि फिर जो है ना वो उनके ऊपर, यानी उनसे दूर हो चुके होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह ये होती है कि जो जब वो छोटे थे तो वो सिर्फ आप से ही वाकिफ थे ना, बाहर की दुनिया का उनको एक्सपोजर था नहीं, तो उनका एक्सपोजर सिर्फ आपके साथ था, बाहर वालों के साथ बहुत थोड़ा था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, हमारी तवक्कोआत उनके साथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है। और तवक्कोआत बढ़ने की के साथ साथ हमारी तवक्कोआत बढ़ जाती हैं, और हमारी जो है ना फिर उनके साथ जो बिहेवियर होता है, वो बिहेवियर भी जो है ना वो बहुत सख्त होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जबकि बाहर वाले जो होते हैं उनको उनके साथ कोई खास तवक्कोआत नहीं होती हैं, तो छोटी मोटी ऐसी दोस्ताना वगैरह की तवक्कोआत होती हैं, और उनका बिहेवियर जो होता है वो बड़ा ही जो है वो अंडरस्टैंडिंग किस्म का बिहेवियर होता है। इस वजह से जो बच्ची होती है उसकी जो स्कूल के अंदर दोस्तें बनती हैं ना, वो दोस्तें जो है वो उसके सामने डिमांड्स नहीं रखती है ना, वो दोस्तें जो है वो उसकी बात सुन रही होती हैं, उसको अंडरस्टैंड कर रही होती हैं। इस वजह से उसका एतमाद का रिश्ता जो है वो अपने दोस्तों के साथ बहुत गहरा बन जाता है, राइट। और माँ बाप चूंकि हर वक्त उसको कोस रहे होते हैं, हर वक्त उसको बुरा भला कह रहे होते हैं, इस वजह से माँ बाप के साथ उसका रिश्ता जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इन चीजों की वजह से भी जो है ना फिर वो गुनाह के रास्ते के ऊपर बड़ी आसानी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। तो माँ बाप को जो है वो बहुत जरूरी है कि इन चीजों को कंट्रोल करें, इन चीजों को सीखना पड़ता है कि भाई क्या आप जो है वो अपने बच्चे के साथ डिमांड कर रही हैं, क्या ये डिमांड कोई ऐसी लाजमी है भी, राइट। क्या मतलब क्या आपके बच्चों को फायदा भी हो रहा है या आपके बच्चों को नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो बहुत बहुत ज्यादा इसके अंदर हमें काम करने की जरूरत है। माशाल्लाह हमारे घर में बच्चों के साथ एतमाद का रिश्ता कायम है। माशाल्लाह अल्लाह ताला आपके घर को नजर बद से बचाए, और उम्मीद यह है कि आप जिस चीज़ को एतमाद कह रही हैं ये वाकई जो है वो एतमाद ही हो, कुछ और ही ना हो चल रहा हो। क्योंकि एक और भी बात याद रखिएगा कि हम बच्चों को जिस बुरे माहौल में भेज रहे होते हैं ना, तो वहां पर ना उनकी यानी घर के अंदर एक डिफरेंट माहौल हो और बाहर एक बिल्कुल डिफरेंट माहौल उनको सामना करना पड़े ना, तो एक सूरत ये भी बन जाती है कि उनकी पर्सनालिटीज जो होती हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं, स्प्लिट पर्सनालिटीज बन जाती हैं। क्या मतलब है इसका? मतलब इसका यह है कि घर के अंदर वो आपको अपना एक एक चेहरा दिखा रहे होते हैं और बाहर अपने आप को बिल्कुल डिफरेंट चेहरा दिखा रहे होते हैं दूसरों को, ठीक है। चलिए माशाल्लाह शादी भी हो गई है तो ठीक है, अब चले आपके खानदान की यहाँ पे डिस्कशन तो खाली नहीं करनी है, मैं तो जनरल बातें कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो स्प्लिट पर्सनालिटी जो बन जाती है ना, तो माँ बाप ये समझ रहे होते हैं कि जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सब कुछ, ठीक है, लेकिन वो आपके सामने ऐसे बन करके रह रहे हैं, असल में उनकी जिंदगी में बहुत सारी और भी तफसीलात हैं जो कि आपको पता ही नहीं चल रही हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं करना है ना, क्योंकि इसी वजह से ये खाली नहीं कि अपने ऊपर एतमाद, ठीक है ना, ये भी तो खाली नहीं करना है ना कि जी मेरे ऊपर बच्चे एतमाद कर रहे हैं कि नहीं, एक एतमाद अल्लाह ताला पर भी तो करना होता है ना, ये ईमानी तरबियत भी तो करनी होती है ना बच्चे की, ठीक है। कि बच्चा ये बात जान ले कि मैं अपने वालिदैन को तो फिर भी गलत कह सकता हूँ, झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन अल्लाह के सामने तो झूठ नहीं बोल सकता ना, अल्लाह ताला से तो कोई भी चीज नहीं छुपा सकता। ये जो ईमानी कैफियत है ये बच्चे के अंदर अगर आप शुरू से जो है वो बनाना शुरू कर दें, तो अब उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। वो आपको धोखा नहीं देगा, आपके साथ जो है वो जाहिरी तौर पर एतमाद का रिश्ता करते हुए धोखे वाला मामला नहीं करेगा, बल्कि वो जानेगा कि भाई मेरे माँ बाप जो है वो, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, कोई इम्पोर्टेंट कॉल ना। जी अच्छा, किसी और ने एक प्राइवेट सवाल भेजा है तो वो मैं पढ़ लेता हूँ। 14 ईयर्स की एज में यहाँ सऊदी में बच्चे ने स्कूल बॉय के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए, हर किस्म के, हम कैसे गाइड करें उस बच्चे को? 14 ईयर्स की गर्ल है, हमसे किसी ने मशवरा किया। हम कैसे गाइड करें उस बच्ची को? देखिए, उसने ताल्लुकात कायम कर लिए हैं तो बच्ची को अब आप गाइड जो करेंगे ना, तो अभी तो वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होगी ना। अनफॉर्चुनेटली बात ये है कि जी गाइड तो उनके पेरेंट्स को करना पड़ेगा ना, राइट? मतलब उनके वालदैन क्या कर रहे थे, क्या किया उन्होंने ये, राइट? तो उनके जो हरकतें हैं उसी की वजह से तो बच्ची जो है वो ऐसी ऐसे मामला हुआ ना उसके साथ। तो बहरहाल ये एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। इस उम्र के जो बच्चा है उसको आप जोर जबरदस्ती से अलग कर देंगे किसी तरीके से, लेकिन बहरहाल करना तो यही पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, कि भाई जाहिर है आप उसको छोड़ तो नहीं सकते ना, कि आप करें जो करना है उसको उस लड़के के साथ, लेकिन ये कोई हल तो नहीं होगा, ठीक है ना? ये एक बेसिकली बहुत बड़ा एक आई डोंट नो, मैं एक फैमिली को जानता हूँ रियाज शहर के अंदर, पाकिस्तानी फैमिली, जिसकी बेटी ने 16 साल की उम्र में खुदकुशी कर ली, अपने गले में फंदा डाल करके, पंखे से अपने आप को लटका करके मार लिया अपने आप को, इसी रियाज शहर के अंदर, पाकिस्तानी एक्सपैट फैमिली, राइट? तो अब वो लड़की किस फेज में है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, तो ये भी तो नहीं कर सकते ना, उसको कहाँ कितना देखेंगे आप, राइट? खुदकुशी कर लेगी, अपना मार लेगी किसी तरीके से या कुछ और कर लेगी, सही है? तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले साजिद ने कहा था कि क्लास के अंदर तो सोल्यूशंस तो नहीं हो सकते ना, राइट? ये तो बहुत बड़ा एक बीमारी वाला मसला हो चुका है, तो इसका तो इलाज, आप तो शायद पता है आपको इलाज मुआवजा का मामला कैसे होता है, तो ये चीजें तो फिर जाहिर है। खैर दुआ तो जाहिर करनी है, सबसे पहले तो दुआ करनी है कि भाई इसके लिए कोई अल्लाह ताला अच्छा हल भी दिमाग के अंदर डालते हैं, ठीक है? तो चले किताब को थोड़ा जो रह गया उसको पढ़ करके ताकि सूरत मुकम्मल हो जाए। तो फरमाते हैं कि ये तो हमने पढ़ लिया था, तमाम हुकूकुल्लाह और सब हुकूकुल इबाद अमानत में दाखिल है, सही? तो फरमाते हैं कि वल्लज़ीन हुम लि अमानातिहिम व अहदिहिम राउन, इस आयत में अमानात जमा का सीगा इस्तेमाल फरमाया है, जैसे दूसरी जगह भी इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन्तुअद्दुल अमानाती इला अहलिहा फरमाया है। दोनों जगह लफ्ज जमा लाने में इस तरफ इशारा है, यानी ये दोनों आयतें कुरान के अंदर, जो एक तो ये सूरह मारिज की आयत है और एक दूसरी जगह की आयत है, इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन्तुअद्दुल अमानाती इला अहलिहा, तो इन दोनों में अमानात यानी अमानत का हुक्म है ना, अमानतदारी का, लेकिन अमानात का लफ्ज इस्तेमाल हुआ प्लूरल, ठीक, जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ, तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसमें इस तरफ इशारा है कि अमानत सिर्फ वो माल ही नहीं जो किसी ने आपके पास रख दिया हो, यानी सिर्फ वो यानी मॉनिटरी चीज नहीं, माल से मुराद सोना चांदी और करेंसी नहीं, बल्कि तमाम हुकूक वाजिबा, यानी जो हुकूक हमारे ऊपर वाजिब होते हैं, वो सारे के सारे हुकूक जिनका अदा करना आपके जिम्मे फर्ज है, वो सब अमानात हैं, इनमें कोताही करना खयानत है। इसमें तमाम हुकूकुल्ला, नमाज, रोजा, हज, जकात भी दाखिल हैं, और तमाम हुकूकुल इबाद जो मिन जानिब अल्लाह किसी पर वाजिब हैं या उसने खुद किसी मुआहदे और मुआमले के जरिए अपने ऊपर लाजिम कर लिए हैं, वो सब अमानत की फहरिस्त में दाखिल हैं और उनकी अदायगी फर्ज, इसमें कोताही खयानत है, ठीक है? अब हुकूकुल्लाह जिनका के हम जो दीन जो दीनदार लोग हैं, जाहिर क्लास में आए हुए हैं तो बेदीन लोग तो नहीं है, दीनदार लोग हैं ना सारी खवातीन माशाल्लाह, ठीक है, तहज्जुद भी पढ़ती होंगी यकीनन और वजीफे भी पढ़ती होंगी, तो हम फिर कौन से अल्लाह ताला के हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं? एक तो ये कि जो दीनदार खवातीन भी होती हैं ना, वो पर्दे को फर्ज नहीं समझती, ठीक है, वो कहीं करती हैं कहीं नहीं करती हैं, सही है? बाहर कर भी लेती हैं लेकिन घर के अंदर नहीं करती हैं, गैर महरम रिश्तेदारों से पर्दा नहीं करती हैं, ठीक है, घर के अंदर काम करने वालों से पर्दा नहीं करती हैं, ठीक है, कजन से पर्दा नहीं करती हैं, खालुओं से पर्दा नहीं करती हैं, ठीक है, तो इस किस्म के जो रिश्तेदार हैं तो उनके साथ और घर में जो लोगों का आना जाना होता है, इवन दीनदार खवातीन उनसे पर्दा नहीं करती हैं, तो पर्दा जो है ये फर्ज है, ठीक है, ये अल्लाह ताला की तरफ से फर्ज है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम अल्लाह का हक मार रहे होंगे, ठीक है। दूसरा जो बहुत बड़ा हम करते हैं मामला, वो आगे उसका जिक्र भी आ रहा है, लेकिन एक है झूठ, झूठ से बचना ये हमारे हमारे यहां फर्ज नहीं है, ठीक है? ये हमारे नजदीक झूठ जो है ना ये गुनाह में नहीं आता, ठीक है? हम बात बदल करके बोल देते हैं, ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं को जो कि छूट होती हैं, और हम बिल्कुल उसको जो है वो गुनाह नहीं समझ रहे होते हैं। और ये दीनदार मुआशरे का सबसे बड़ा नासूर है कि झूठ से बचना जो है वो हमारे दीन का हिस्सा नहीं है। हालांकि ये अल्लाह का हक है, ठीक है? झूठ ना बोलना ये हमारे परवरदिगार का हक है। तो जब झूठ बोलता है बंदा तो अल्लाह का हक मार रहा होता है, ठीक है? और हक मारना क्या होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जुल्म करना। हक किसी का मारा जाए उसको जुल्म करना कहते हैं। तो अल्लाह ताला पर जुल्म कर रहे होते हैं, क्या मतलब? अल्लाह ताला को हम कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन जुल्म करने का मतलब ये होता है, असल मतलब ये होता है कि जिसका जो मुकाम है ना उसको वो मुकाम ना दिया जाए। तो अल्लाह ताला का क्या मुकाम है कि अल्लाह ताला के हुकूक जो है वो अदा किए जाए, सही है? तो हम जब अल्लाह का हक जो है वो जानबूझ कर नहीं अदा कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम अल्लाह का हक मार रहे होते हैं। हक मारना ही जुल्म है। जुल्म का मतलब लाठी से किसी को मारना जरूरी नहीं है, राइट? किसी को जो है वो बंदूक से मारना जरूरी नहीं है कि भाई बंदूक से मारेंगे तभी जुल्म होगा, हक मारेंगे उसका तो जुल्म होगा। तो आजकल दुनिया में जो हो रहा है कि मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, तो हमें जो है वो हर वक्त जो है वो काफिर नजर आते हैं जो हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, हमें वो जुल्म नजर नहीं आता जो कि हम कर रहे हैं, राइट? और हमारा कोई इरादा भी नहीं होता कि हम उस जुल्म से तौबा करें, उस जुल्म को छोड़ें। तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए। कल आप में से कुछ लोगों को शायद मेरा मैसेज भी मिला हो कि जो इस वक्त पड़ोसी मुल्क के अंदर हालात शुरू हो गए हैं, बहुत तेजी के साथ खराब हो रहे हैं, राइट? तो इस आजिज ने एक कुछ लोगों ने सवाल किया था कि हम क्या करें, तो इस आजिज ने एक जवाब लिखा कि अपना जो हम अपनी जिंदगी में जुल्म कर रहे हैं, ठीक है, अपनी जिंदगी में जो हम लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह के साथ जुल्म का मामला कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल के साथ जुल्म का मामला कर रहे हैं, उसको तर्क करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो लोग हम पर जुल्म कर रहे हैं ना, ये असल में हमारे अपने जुल्म की सजा है, राइट? तो जब तक अपने जुल्म को नहीं छोड़ेंगे, उस वक्त तक नारे लगाने से और एहतजाज करने से तो इससे नहीं बच सकते, है ना? ठीक है, आप जरा थोड़ा सा तवक्कुफ करें, ठीक है, वरना तो आप माइक ले लें, आप पढ़ाना शुरू कर दें। क्या ख्याल है आपका? ऐसे तो नहीं करना चाहिए ना, ठीक है? तो इस वजह से जो इससे मेरी डिस्ट्रैक्शन भी होती है ना कि आप माशाल्लाह आगे से जो है वो करना शुरू हो जाए इस तरीके से, ठीक है? तो जुल्म से जो है वो तौबा करनी होगी ना, तब कहीं जाकर के हम अल्लाह ताला की मदद के मुस्तहिक होंगे, ठीक है? वरना जो है वो आप इस तरीके से जो एहतजाज शुरू कर देंगे, तो अभी एक बहुत बड़ा मुल्क मुसलमानों का, जिसके अंदर मुसलमानों की मेजोरिटी थी, बहुत बड़ी मेजोरिटी थी, नबी अलैहिस्सलाम के जमाने से जो है वो इस्लाम वहां पर पहुंचना शुरू हो गया था, ठीक है, शाम का मुल्क, तो वहां पर भी तो इसी तरीके से एहतजाज शुरू हुए थे। क्या बना उस मुल्क का? पूरा मुल्क जो है वो खंडर बन चुका है, हालांकि मुसलमान मेजोरिटी में थे वहां पर, वाजह मेजोरिटी में थे, ठीक है? और जिन मुल्क के अंदर हम मेजोरिटी में भी नहीं है, हम बहुत ही थोड़े हैं, तो वहां पर ये सड़कों पे एहतजाज करने से कोई फायदा हो जाने वाला है आपको? कुछ आपको क्या हो जाएगा उससे, राइट? तो अल्लाह ताला की मदद अपनी तरफ करनी पड़ेगी, और उसका रास्ता सिर्फ यही है कि गुनाहों से तौबा करनी पड़ेगी, राइट? अपने जुल्म को जो है वो तर्क करना पड़ेगा। जो हम अपने घरों के अंदर हम जुल्म कर रहे होते हैं, अपने बड़ों के साथ जुल्म कर रहे होते हैं, छोटों के साथ जुल्म कर रहे होते हैं, राइट? तो उससे तौबा करेंगे तो फिर अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होगी ना। अल्लाह ताला बात की समझ अता फरमाए, वरना ये बात समझना इस वक्त तकरीबन ऐसा लगता है कि कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं होता इन बातों को। चलें आगे चलें कि ये जो अमानतें हैं तो सारी की सारी अमानतें इसके अंदर दाखिल हैं, और हुकूक उल इबाद वाली अमानतें, तो हुकूक उल इबाद में जो औलाद का हक होता है माँ बाप के ऊपर, राइट, कि माँ बाप जो है उन औलाद को अच्छी तरबियत दें, दीन इस्लाम की तरफ लगाएं। हमने अपने औलाद का जहन जो है बिल्कुल वैसे ही बनाया हुआ है जैसे हमारा अपना जहन बना हुआ है, कि सारी की सारी जो कामयाबी है वो इस दुनिया की इज्जत के अंदर है, इस दुनिया की तालीम के अंदर है, इस दुनिया के मामलात के अंदर है। हम अपने औलाद में यही ट्रांसफर कर रहे हैं। अब हमारी औलाद जो है वो नेक बनना भी चाहती है ना, तो वो बन नहीं पाती, क्योंकि वो हर वक्त इस मुश्किल में मुब्तला रहती है कि अगर मैं दीन की तरफ आ गया तो दुनिया मुझसे छूट जाएगी, मैं दुनिया में कहीं का नहीं रहूंगा। ये लिटरली ये एक्चुअल हालात चल रहे हैं हमारी औलाद के जहन में। वो इस कश्मकश का शिकार हैं कि अगर मैं दीन की तरफ आ गया तो कोई भी मुझे पूछेगा नहीं,
तो भाई आप लोग जो के वालदेन हैं, राइट, माएं हैं, माएं अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को ये एहसास दिलाएं कि पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ देगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मेरी तुम्हें कंप्लीट सपोर्ट हासिल होगी अगर तुम दीन के रास्ते को पसंद करोगे। और उनको ये भी बात याद दिलाएं कि दीन का रास्ता इख्तियार करने से दुनिया पीछे पीछे आती है, दुनिया छूट नहीं जाती, ये शैतान का वसवसा है जो कि तुम्हारे दिल में डाल रहा है कि दुनिया छूट जाएगी। अल्लाह ताला तुम्हें वैसी इज्जत अता फरमाएंगे जैसी दुनिया के रास्ते पर किसी को मिल ही नहीं सकती है। दुनिया के रास्ते पर कोई तसव्वुर नहीं कर सकता ऐसी इज्जत जैसी अल्लाह ताला दीन के रास्ते के ऊपर तुम्हें अता फरमाएंगे। तो शैतान के इस वसवसे को तुम झटक दो, शैतान के वसवसे को निकाल दो अपने जहन से, तुम दीन का रास्ता इख्तियार करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, राइट, और अल्लाह ताला तुम्हारा साथ देंगे, मुझसे भी बढ़कर के अल्लाह ताला तुम्हारा साथ देंगे, और ये दुनिया जो है ये नहीं छूटेगी तुम्हारी, ठीक है। इस तरह का एहसास दिलाना पड़ता है। लोग जो उसको मलामतें करते हैं दीन के रास्ते के ऊपर, जो लोग उसको मलामतें करते हैं, आपको उसका उसका यानी मुतबादिल देना होगा, उसको उसको बताना होगा कि नहीं, लोगों की मलामतों का ख्याल ना करो, राइट, अल्लाह और उसके रसूल का हक का ख्याल करो, मेरा हक, अपने हक को उसके ऊपर डालें कि मैं उस वक्त तक तुमसे खुश नहीं होंगी कि जब तक तुम अल्लाह और उसके रसूल का हक नहीं अदा करोगे। ऐसे माओं को अपनी औलाद से बात करनी चाहिए, राइट, कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मेरा तुमसे रिश्ता खत्म हो जाएगा अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल का हक नहीं अदा करोगे। लोगों की मलामतों की वजह से तुम अल्लाह और उसके रसूल का हक मारने का सोच रहे हो, राइट, ओवर माई डेड बॉडी ऐसे बोलना चाहिए, मेरी लाश पर से तुम्हें गुजरना पड़ेगा। ऐसे अपने बेटों की ईमान की, ऐसी माएं जो है ना ऐसे ईमान बनाती हैं अपने बेटों का, राइट, तो क्यों ऐसा नहीं बनाते हम लोग? क्या किया है हमने ये सारे के सारे वजीफे पढ़ पढ़ के और तहज्जुदें पढ़ पढ़ के? क्या खाक आया है हमारे हाथ में इन तहज्जुदों के जरिए से? तहज्जुद पढ़ने से मना नहीं कर रहा हूं मैं आपको, राइट, लेकिन ये तो सोचे ना, तहज्जुद प्रिय पढ़ा और दिल के अंदर ऐसे कुछ ईमान की रत्ती नहीं आई, अपनी औलाद को जो है वो ईमान के रास्ते पर नहीं डाला, सिर्फ जो है वो दुनिया के रास्ते के ऊपर डाला हुआ है, तो अपनी जिंदगी से मुतमईन होकर के हम बैठे हुए हैं कि जी तहज्जुदें तो पढ़ रहे हैं और वजीफे भी पढ़ लेते हैं। तौबा करनी चाहिए इन इस किस्म की सोच से। तो आगे फरमाते हैं वल्लदीना हुम बिशहादातिहिम काइमून, कि यहां भी लफ्ज शहादात को बिलफ्ज जमा लाने में इस तरफ इशारा पाया जाता है कि शहादत की बहुत सी किस्में हैं और हर किस्म में शहादत को कायम रखना वाजिब है, ठीक है। जो भी यानी शहादत का मतलब होता है गवाही देना, राइट, किसी बात को टेस्टिफाई करना जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो हर किस्म की शहादत को कायम रखना, यानी कायम रखना से मुराद ये कि उसको पकड़ के रखना, उसको इस्टेब्लिश करना और उससे जो है वो पीछे भाग ना जाना, ठीक है, ये मतलब है कायम रखना। यानी डर के मारे होता है ना, कि जैसे आपने जो है वो कोर्ट के अंदर जाके गवाही दी किसी मामले में कि हाँ भाई ये बंदा जो है इसने फलाने शख्स को कत्ल किया था या इसने उसके ऊपर जुल्म किया था, अब वो आगे से आपको धमकियां देना शुरू कर दे कि मैं देख लूंगा तुम्हें और मैं तुम्हारे तुम्हारे खानदान को नहीं छोड़ूंगा, तो उससे डर करके इंसान भाग जाए और कह दे कि नहीं मैंने शहादत नहीं देनी, मैं नहीं आ सकता, गायब हो जाए वो बंदा गवाह, राइट, तो नहीं, बल्कि हर किस्म की शहादत को कायम रखना वाजिब है। इसमें शहादत शहादत ईमान तौहीद और रिसालत भी दाखिल है, ठीक है। यानी ये तो सबसे पहली शहादत है ना, आप कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं शहादत देता हूं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई भी इबादत के काबिल नहीं है, वो अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि नबी अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला के रसूल हैं, इबाद हैं, तो ये तो सबसे पहली शहादत है। तो इस शहादत से जो पीछे मुड़ जाना और यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ जुल्म किया है, अभी तो हमने अल्लाह के साथ जुल्म के बारे में दो बातें करी थी ना, झूठ बोलना, अल्लाह ताला ने जो फर्ज करार दी चीजें वो फर्ज ना अदा करना, ये अल्लाह ताला के साथ जुल्म है। नबी अलैहिस्सलाम के साथ क्या जुल्म है? कि नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से मुअल्लिम बना के भेजे गए थे, टीचर बना के भेजे गए थे, तो हम नबी अलैहिस्सलाम से चीजें सीखने की बजाय हम जो है वो अपना टीचर जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ जो लोग हैं उनको बना लें, राइट, काफिरों से चीजें सीखना शुरू कर दें, अल्लाह के दुश्मनों से जो है वो चीजें सीखना शुरू कर दें। तो मुअल्लिम का जो मर्तबा था वो अल्लाह ने अपने रसूल को दिया था, ہم رسول کو چھوڑ کر کے جو ہیں وہ کیا وہ لوگ جو یا وہ کوٹس ڈالتے ہیں نا اپنے واٹس ایپ کے اوپر جو وہ میسیجز کیا کیا ہوتے ہیں وہ پروفائل میسیجز ہوتے ہیں اور ای میل کے اندر بھی اس طرح کے, تو اس کے اندر کنفیوشیس کیا تھا وہ وہ چائنیز جو اسکالر تھا کنفیوشیس نام تھا اس کا کنفیوژن ہے, تو وہ اس کے کوٹس ڈال رہے ہوتے ہیں رائٹ, اور جو وہ ابراہم لنکن کے کوٹس ڈال رہے ہوتے ہیں رائٹ, اور اس طرح کے جو وہ ویسٹرن اسکالرز ہوتے ہیں نان مسلم اسکالرز ان کے کوٹس ڈال رہے ہوتے ہیں. کیا اللہ کے نبی کی حدیثیں تمہارے لیے ختم ہو گئی ہیں؟ اللہ کا قرآن جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آئے تھے اس میں تمہیں کوئی چیز ایسی نہیں ملتی کہ جس کو کہ تم کوٹ کر سکو. تو یہ ظلم, یہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, ان کو معلم اپنا بنانے کی بجائے کسی اور کو اپنا معلم بنا رہے ہیں رائٹ. تعلیمی نظام جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلیمی نظام تھا, اس تعلیمی نظام کو اپنی نجات کا سبب سمجھنے کی بجائے جو کافروں کے تعلیمی نظام ہے اس کو اپنا اور اپنی اولادوں کے نجات کا سبب سمجھ رہے ہیں رائٹ, کہ اس کے بغیر تو نہ یہ دنیا کے رہیں گے بلکہ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ تعلیم نہیں حاصل کری بالکل لگ کر کے دین کو کمپرومائز کر کے, بھائی ہم کوئی منع نہیں کر رہے کہ آپ تعلیم حاصل نہ کریں, یہ نہیں کہہ رہے, لیکن دین کے اوپر ترجیح دے کر کے اس تعلیم کو حاصل کرنا, دین کو کمپرومائز کر کے اس تعلیم کو حاصل کرنا یہ تو حلال نہیں ہے نا, یہ تو حرام ہے رائٹ. لیکن ہم دین کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اپنی اولاد. کیا جواب ملتا ہے ہمیں لڑکوں سے رائٹ, یہ جو کالج یونیورسٹی کے لڑکے ہوتے ہیں, دین کا کوئی چھوٹا سا کام بتاؤ, چھوٹا سا کام نا جس کے اندر چند گھنٹے لگیں گے ان کے بس, یعنی ایک, یہ نہیں کہ روزانہ چند گھنٹے لگیں گے بلکہ صرف ایک دفعہ کرنے کا کام ہے, چند گھنٹوں میں وہ مکمل ہو جائے گا, دو تین گھنٹوں کی بات ہوتی ہے. آگے سے جواب کیا ملتا ہے کہ میرے فائنل ایگزامز ہونے والے ہیں, مجھے اسائنمنٹ دینا ہے, مجھے جو ہے وہ پروجیکٹ کرنا ہے, تو میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں رائٹ. میں دو تین لڑکوں کی بات بتا رہا ہوں جن کے والدین ماشاءاللہ بہت دیندار والدین ہیں ٹھیک ہے, تو وہ ان کے والدین کی وجہ سے یہ بچے جو ہیں وہ تھوڑا بہت جب انہوں نے بات شروع کری تو اگر ان کو تھوڑا سا کام بتاؤ نا جو کہ چند گھنٹوں میں مکمل ہو جائے گا, تو ان کا ایگزام اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس طرح کا ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں کر سکتے. تو یہ جو کالج کا امتحان ہے یہ اتنا زیادہ اہم ان کے ذہن میں کیسے بن گیا کہ ایک چھوٹا سا کام کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہو رہے. اتنی تو اہم ہے نا یہ کالج کی پڑھائی, یہ اسکول کی پڑھائی, کس نے بنایا اتنی اہم اس چیز کو, کن والدین نے ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ کالج اور اسکول کی پڑھائی کو بنا کر کے رکھا رائٹ. یہ آپ ہم جیسے ہی والدین ہیں نا, دیندار قسم کے والدین, یہ دنیا داروں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, یہ تو دینداروں کی بات ہو رہی ہے. تو بھائی کیا فائدہ ہے اس دین کا, کیا فائدہ ہے ان عبادتوں کا, کہ اگر دین کو ہم دنیا سے زیادہ اہمیت ہی نہ دے سکے. یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ کالج میں نہ پڑھائیں, آپ اسکول میں نہ پڑھائیں, یہ تو نہیں کہہ رہے, لیکن کم از کم اس کی اہمیت جو ہے وہ اتنی تو دین کی ہونی چاہیے نا کہ کم از کم امتحان کے جو ہے وہ چھوٹا سا تو کیا نقصان ہو جائے گا یار, امتحان کے اندر گریڈز نہیں آئیں گے, ابو ناراض ہو جائیں گے, اما ناراض ہو جائیں گی, گولڈ میڈل نہیں ملے گا کالج کے اندر رائٹ. تو ذہنی سوچ جو ہے نا یہ اصل چیز ہوتی ہے, اگر سوچ ہی الٹی ہوئی ہو تو اعمال کی بنیاد پر دین نہیں ہوتا, اعمال نہیں ہوتے خالی دین کے اندر, سوچ ہی الٹی ہوئی ہوئی ہے پوری کی پوری. تو یہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ جو ہم ظلم کر رہے ہیں, اس ظلم کا کون حساب دے گا؟ اس ظلم کے اوپر کیا ہماری پٹائی نہیں ہونی چاہیے, ہم جو ہے وہ رسوا نہیں ہونے چاہیے اللہ کے رسول کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, کوئی معمولی چیز کے ساتھ تھوڑی ظلم کر رہے ہیں رائٹ. ہلال رمضان یعنی جو رمضان کا چاند ہوتا ہے, اور حدود شریعہ کی شہادت بھی, اور لوگوں کے باہمی معاملات جو کسی کے سامنے ہوئے ہوں ان کی شہادت بھی, کہ ان شہادتوں کا چھپانا اور ان میں کمی بیشی کرنا حرام ہے, ان کو صحیح صحیح قائم کرنا اس آیت کی روح سے بھی فرض ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آیت جو ہے وہ اس بات کی فرضیت کو بھی ثابت کرتی ہے. ٹھیک ہے, کہ گواہی جو ہے وہ ہم نے صحیح صحیح دینی ہے اور پیچھے اس کے اندر سے, یعنی پیچھے اس سے نہیں ہٹنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے, کیونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ بہت زیادہ استقامت مانگتا ہے. جب آزمائش آتی ہے نا, خصوصاً جب دھمکیاں ملتی ہیں ٹھیک ہے, اور اپنی جان جو ہوتی ہے نا وہ خطرے میں لگتی ہے کہ اگر گواہی دی تو مار دیے جائیں گے یا اٹھوا لیے جائیں گے, تو اس وقت پھر شہادت پہ قائم رہنا جو ہے نا وہ آسان نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بہت مدد کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پہلی بات تو یہ اے اللہ ایسی آزمائش میں ہمیں مبتلا ہی نہ کر, ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو کیا فرمایا تھا, انہوں نے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے نبی میں اللہ سے کیا مانگوں, تو انہوں نے اپنے چچا کو فرمایا آپ اللہ سے عافیت مانگیں. رائٹ, عافیت مانگیں. عافیت کا یہ مطلب ہے کہ اے اللہ بس آزمائشوں سے بچا کے رکھیں. ٹھیک ہے, ہوتا نا بچ بچا کر کے بس یہ اے اللہ زندگی جو ہے وہ ایمان کے ساتھ مکمل کروا دیں. ٹھیک ہے, اس کو عافیت کہتے ہیں. تو آزمائش میں مبتلا ہو جائیں تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ پہلا کام بھی کرنے کا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہیں کہ اے اللہ آزمائش میں مبتلا ہی نہ کریں. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو چھوٹے موٹے ہماری زندگی کے اندر ایسے معاملے آتے رہتے ہیں نا کہ جن کے اندر سچ بولنا ہوتا ہے, جھوٹ کو اوائڈ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. ہر جگہ تو نہیں ہوتا نا کہ اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو کوئی قتل کر دے گا, ہر وقت تو ایسا نہیں ہوتا. بہت عام سے گھریلو معاملات ہوتے ہیں جن کے اندر ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے کہ سچ بولیں یا جھوٹ بولیں. تو ایسے معاملات میں صرف سچ بولیں, جھوٹ ہرگز نہ بولیں. ٹھیک ہے, اور جو اس طرح کے عام سے گھریلو معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر اگر کبھی کسی کے متعلق گواہی دینی پڑ جائے, ٹھیک ہے, مثال کے طور پر آپ کے گھرانے کے اندر جو آپ کی نند ہیں, ٹھیک ہے, نند صاحبہ نے جو ہے وہ کوئی غلط کام نہیں کیا, لیکن جو آپ کی امی ہیں تو وہ پیچھے پڑی, نند کیا نہیں بھابھی, سوری مجھے اتنا رشتوں کا یاد بھی نہیں رہتا کون کیا ہوتا ہے, خیر آپ کی بھابھی ہیں, بھابھی نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا, بھابھی نے ٹھیک کام کیا تھا, لیکن آپ کی امی جو ہے نا وہ بھابھی سے بڑی سخت قسم کی ناراض ہوئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا, اور وہ امی جو ہے نا وہ بھابھی کو جو ہے نا ذرا ٹائٹ کر کے رکھنا چاہتی ہیں. تو اب آپ کو پتا ہے کہ بھابھی نے غلط کام نہیں کیا ہے اور امی جو ہے وہ تلی ہوئی ہیں کہ بھابھی کو جو ہے وہ ذرا میں ٹائٹ کر کے رکھوں. تو ایسے موقع کے اوپر بھابھی کی طرف سے گواہی دینا, رائٹ, بھابھی کی طرف سے گواہی دینا کہ ہاں اس نے یہ غلط کام نہیں کیا ہے, امی آپ اس طرح سے نہیں کیجئے, امی سے جھگڑا لڑائی نہ کرنا, غصہ نہ نکالنا امی کے اوپر, لیکن صحیح شرافت کے ساتھ اچھے انداز سے امی کو منع کر دینا کہ امی غلط کام میں میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے, میں بھابھی کی کسی ایسے گناہ کے اوپر جو انہوں نے کرا ہی نہیں ہے میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے, اب یہ کوئی آپ کو آپ کی امی جو ہیں وہ قتل تو نہیں کر دیں گے نا, ٹھیک ہے نا, آپ تو ان کی بیٹی ہیں, سگی بیٹی ہیں, رائٹ, تھوڑا بہت آپ سے ناراض ہو جائیں گی لیکن اللہ تعالیٰ تو آپ سے خوش ہو جائے گا نا اس موقع کے اوپر. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے امی کے ساتھ بدتمیزی بھی نہیں کری ہے اور آپ نے شہادت بھی جو ہے وہ اللہ کا حق سمجھتے ہوئے شہادت بھی صحیح طریقے سے دے دی ہے. ٹھیک ہے, تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے, یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, یہ کوئی وہ والا معاملہ نہیں تھا کہ کسی کو آپ نے جو ہے وہ قتل کرتے ہوئے دیکھا تھا اور اس کی شہادت اگر آپ دیتی تو وہ آپ کو گھر سے اٹھوا کے لے جاتے, یہ تو اتنا بڑا معاملہ تو نہیں تھا نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور دوسرا یہ کہ جو چھوٹے موٹے ہمارے گھریلو معاملات ہوتے ہیں نا ان کے اندر ہم ہرگز ہرگز جھوٹ نہ بولیں اور ہرگز ہرگز جو ہے وہ جھوٹی گواہی نہ دیں. ٹھیک ہے, جب ایسا معاملہ جب بندہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں, اس کو بڑے آزمائشوں میں مبتلا نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی سوال ہو اس ٹاپک کے اوپر یا کوئی اور؟ اسی طریقے سے ایک اور بھی بات ہے, جیسے پچھلی آیت میں احدہم کی بھی بات ہوئی ہے نا, جو اللہ جو وعدے ہوتے ہیں تو وعدوں کی رعایت کرنا. ٹھیک ہے, تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہر وقت جو ہے نا ہم کسی سے وعدے نہ کر لیا کریں. لوگوں کی کچھ عادت بھی بن جاتی ہے, ہر وقت جو ہے وہ کوئی وعدہ کر لیا, ہاں میں ایسا کروں گی, ہاں میں ایسا کروں گا. ٹھیک ہے, تو بھائی آپ نے یہ وعدہ جو کر لیا ہے تو اب آپ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کر سکیں گے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کوئی ایسی سچویشن آ جائے کہ آپ نہیں کر سکیں گے, تو پھر تو آپ کو وعدہ خلافی کرنی پڑے گی اور وعدہ خلافی کرنا گناہ ہے. تو بھائی آپ کو ضرورت کیا تھی کہ آپ نے وعدہ کر لیا, ہر وقت تو وعدہ کرنا ضروری نہیں ہوتا نا, کبھی ایسی پیش آ جاتی ہے کہ جب وعدہ کرنا پڑتا ہے, لیکن کچھ لوگ عادتاً وعدہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی کسی دوسری خواتین کی کلاس کے اندر کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے ایسی منت نہیں ماننی چاہیے جو کہ آپ پورا نہ کر سکیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر کسی نے اللہ تعالیٰ سے منت مانی کہ اے اللہ اگر آپ نے میرا یہ کام کروا دیا نا تو میں ہمیشہ جو ہے وہ یعنی تہجد پڑھوں گی, میں ہمیشہ اشراق پڑھوں گی. ٹھیک ہے, تو کیا ایسی منت ماننی چاہیے؟ تو انہوں نے کسی اور سے پوچھا کہ بھائی ایسی منت نہیں, تو یعنی کسی اور مفتی صاحب سے پوچھا نا کہ ایسی منت مان سکتے ہیں کہ میں ہمیشہ اشراق کی نماز پڑھوں گی؟ تو مفتی صاحب نے ان کو جواب دیا کہ نہیں, یعنی مان سکتے تو ہیں, یعنی یہ منت ماننا جائز تو ہے لیکن ماننی نہیں چاہیے, کیونکہ ہمیشہ تہجد پڑھنا یا ہمیشہ اشراق پڑھنا یہ بہت مشکل کام ہے. بندہ بیمار ہو جاتا ہے, بندہ جو ہے وہ سفر میں چلا جاتا ہے, کوئی اور مجبوری آ سکتی ہے, آپ نہیں کر سکیں گے یہ کام. ٹھیک ہے, تو ایسی منت نہیں ماننی چاہیے, ماننی نہیں چاہیے, یعنی اللہ سے ایسا وعدہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ان صاحب نے جو مفتی صاحب تھے انہوں نے صحیح جواب دیا, بالکل صحیح جواب دیا, لیکن انہوں نے آگے سے نا ایک اور بات جو کری نا وہ اس پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ لیکن ایسی منت مان لینا چاہیے کہ میں کوشش کروں گی ہمیشہ تہجد پڑھنے کی, میں ہمیشہ جو ہے نا وہ اشراق پڑھنے کی کوشش کروں گی. ٹھیک ہے, تو ایسی منت مان لینی چاہیے, یہ نہیں کہ میں پڑھوں گی بلکہ میں کوشش کروں گی. تو اس عاجز نے پھر آگے سے سمجھایا کہ نہیں, ایسی بھی منت نہیں ماننی چاہیے کہ میں ہمیشہ کوشش کروں گی, کیونکہ ہمیشہ کوشش کرنا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے کہ آپ روزانہ جو ہے نا وہ آپ کے دل کی کیفیت ایسی رہے کہ آپ روزانہ تہجد کی کوشش کر سکیں, آپ روزانہ اشراق کی کوشش کر سکیں. بھائی بندے کے اوپر اتار چڑھاؤ آتا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ مزاج جو ہے وہ کبھی نرم ہوتا ہے, کبھی گرم ہوتا ہے, کبھی اس کے حالات موافق ہوتے ہیں, کبھی اس کے حالات جو ہے وہ, یعنی یہ اندرونی حالات کی بات ہو رہی ہے, بیرونی حالات کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, بیرونی حالات تو پہلے ڈسکس ہو چکے ہیں کہ بھائی آپ سفر میں ہوں گی تو آپ تہجد پڑھ نہیں سکیں گی, آپ اشراق پڑھ نہیں سکیں گی. اب جو میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیشہ کوشش کروں گی, کیا یہ منت مان سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس کا جواب اس عاجز کی طرف سے یہ ہوگا کہ نہیں, ایسی بھی منت نہیں مانے کہ میں ہمیشہ کوشش کروں گی. ٹھیک ہے, اس لیے کہ بندے کے مزاج میں اندرونی حالات میں بھی اتار چڑھاؤ چلتا رہتا ہے. تو اگر آپ جو ہے وہ کسی دن کوشش نہیں کر سکیں گی, کوئی آپ کے ذہن میں ایسی باتیں چل رہی ہیں, شیطان کے وسوسے جو ہیں وہ غالب آ گئے ہیں, یا کوئی اور جو ہے وہ ریزن بن گیا ہے, تو آپ پھر بھی جو ہے وہ اس منت کو توڑنے والی بن جائیں گی. ٹھیک ہے, تو اگر منت ماننی ہے نا تو بھائی کوئی آسان سی ماننی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو آپ کی منتوں کی کوئی وہ سنگینی ریکوائرڈ نہیں ہے کہ اتنی بڑی منت مانے گی تبھی جو میں جو ہے میں اس کا کام کروں گا, یہ مطلب نہیں ہے. بس اتنی سی منت مانگے کہ بھائی آپ کے پاس اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس طرح کی منت مان سکتے ہیں کہ بھائی میں اتنا مال جو ہے وہ صدقہ کر دوں گی, جو آپ کے لیے ایزلی افورڈیبل مال ہو صدقہ کرنے کے لیے, اتنی منت مان لیں کہ میں 10,000 روپے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دوں گی, یا 1,000 روپے صدقہ کر دوں گی, بس کافی ہے. ٹھیک ہے, ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لینا کہ میں ہمیشہ یہ کروں گی یا میں ہمیشہ کوشش کروں گی, اپنے آپ کو خامخواہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی مصیبت میں مبتلا کر دینا ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بھائی وعدہ جو ہے نا وہ بھی کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ میں کیا وعدہ کر رہی ہوں, کس سے وعدہ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, البتہ اگر کرنا پڑ جائے کسی بھی ریزن کی وجہ سے تو پھر اس وعدے کو نبھانا یہ بھی فرض ہے. ٹھیک ہے جی, کوئی سوال, کوئی ان پٹ؟ چلیں بہتر ہے, کلاس ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.